नमो महापतंगाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौजस्तु हे कृष्ण सौनासिंहो दीनदंतो जयस्तते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावन मां सुंदरे चैतन्य महाप्रभु जी और रामायण के लिए पात्र साधन तत्व के संबंध में हम लोग इसमें राधा कृष्ण को साधन क्या बतलाया रुचि भाव से और उन्होंने कुछ कहने के लिए आगे कहने के लिए किया यद्यपि शास्त्र अवधि उन्होंने बतलाया तो भी और कुछ मतलब और कुछ बाकी रह गया और उसके लिए चार चार पूछा कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व और ये चार चीजों के लिए आप इसके संबंध में बतलाई उन्होंने कहा इस काम से वो तो देखते हैं कि आपके के द्वारा पूरा हो रहा है हमारे ऊपर निशाद हम भट्टाचार्य जी ने की बात है और मैं यहाँ आया वैसा ही आपको दे रामानंद जी कहेंगे कि आप जो हमको प्रेरणा हमारे हृदय में कराएंगे वही मैं कहूँ मैं ही बिना आपके बिना तंत्र को बजाने वाला प्रभु जी ने उत्तर दिया मैं मायावादी सन्यासी हूँ भक्ति तत्व में कुछ नहीं जानता मायावाद नहीं के समुद्र में मैं जोड़ता उतर आता हूँ साधन से जी के साथ में हमारा मन कुछ निर्मल हुआ और उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण कथा कुछ नहीं जानता राय रामानंद के पास में और आप मेरी गलतियां कर रहे हैं मैं आपके पास में आया कभी आप जैसे प्रेरणा देने में कर रहे हैं परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण स्थान अनंत वैकुंठ अनंत अवतार अनंत ब्रह्मा दिहा सभा आधार सचिदानंद गजेंद्र नंदन सब ऋषिगंज सब शक्ति सब रत्पूर्ण ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण का ये ब्रह्म संहिता का उपयोग किया इसके उदाहरण इसके प्रमाण ये ईश्वर परम कृष्ण है उसका इन्होंने ये तीन आयाम है बहुत ही सुंदर और जहाँ तक अर्थ हो सकता है उन्होंने किया यदि प्रवेश नहीं करेंगे तो समझ में नहीं इस श्लोक में जो है उसको एकदम मुक्त प्रग्रह रूप से इसकी व्याख्या उन्होंने ऐसा सुंदर अर्थ कोई हो ही नहीं सकता इसी तरह से श्रीमद भागवत के जितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं सब उन्होंने चैतन्य चरितार्थ में लिए हैं संग्रह करके लिए
उसका अर्थ जैसा कि रघुनाथ ठाकुर ने इनको कहा था, जरा दामोदर के साथ महाप्रभु कैसे आस्वादन करते हैं, उन्हीं को उसी तरीके से अर्थ किया। भागवत की टीकाओं में भी जो नहीं मिलेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन सबका बहुत ही सुंदर अर्थ किया। ये भी एक भागवत के टीकाकार ही है,
इतने अद्भुत रचित इतना अलंकार और इतना साहित्य
तो वहाँ से पढ़ नहीं सकते हैं भजन के द्वारा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान की भगवत्ता दो प्रकार की होती है, एक सर्वैश्वर्य पूर्ण और दूसरा होता है सर्वरस पूर्ण, एक रस की दृष्टि से और एक होता है ऐश्वर्य की दृष्टि, मैंने एक माधुर्य की दृष्टि से और एक ऐश्वर्य। तो यहाँ पर पहले ऐश्वर्य का उनका वर्णन कर, पहले लैंगे ईश्वर परमात्मा सचिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण, इसके देखने से मालूम होता है सब प्रकार के जो ऐश्वर्य है उन्हीं का वर्णन, किंतु इसमें माधुर्य का भी वर्णन कारण कारण में वो सब ले लिया और सच्चिदानंद विग्रह में वो लिया। तो ये कर रहे हैं स्वयं भगवान जिससे सब लोगों की सब अवतारों की भगवत्ता होती, जैसे एक ही चंद्र अपनी 15 कलाओं में 16 कलाएं से और ग्रहों के स्थान के ऊपर में रहने से यहाँ के व्यक्ति ग्रहों के स्थान के ऊपर में रहने से यहाँ के व्यक्ति यहाँ के लोग पृथ्वी लोग के रहने वाले लोग चंद्र को चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी कार्तिक द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या इस रूप में देखते हैं। चंद्र में ऐसा कुछ है ही नहीं, चंद्र में स्वरूपता कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इतनी कलाएं है नहीं है, किंतु छाया के वजह से सूर्य और चंद्र और पृथ्वी इन तीनों की स्थितियों के कारण ऐसा ये दिखता है। जैसे सूर्य है, सूर्य में रात्रि और दिन नहीं है, केवल दिन ही दिन है, शाम सवेरे दोपहर रात आधी रात या अस्तयाम सूर्य में नहीं है, है कुछ नहीं है, किंतु कैसे दिखता है
नित्य प्रकाश,
वो तो नित्य प्रकाश सूर्य है, उनमें न आधी रात है न दिन है न 12 बजे का है न 8 बजे का न 6 बजे का, सब समय एक ही समान नहीं होते, सब समय एक ही समान ताप और सब कुछ है, किंतु वो दिखता है कैसे, तो वो ऐसे दिखता है हम लोगों के यहाँ। जब पृथ्वी सूर्य के दूसरे तरफ में घूम आती है दूसरे दिन तो आधी रात हो गई, सामने आए तो दिन हुआ, जब छिपने लगे तब शाम हो गई, जब उठने लगे तो सवेरा हो गया। यथार्थ में सूर्य में कुछ भी नहीं है, ये सब अवस्थाएं हैं, इसी तरह से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वयं भगवान, तो जो स्वयं रूप कृष्ण है वही ब्रजेंद्रानंद, उनमें ही साधना के तात्पर्य से वो कृष्ण के अनेक रूप जैसे दिख पड़ते हैं, किंतु है नहीं। साधना के तात्पर्य से ही ऐसा दिखता है, जैसे सूर्य और चंद्र के ग्रहों के चाल पर, स्थिति पर सब कुछ ये निर्भर करता। वैसे कृष्ण जैसे चंद्र या सूर्य परिपूर्ण रूप में है, चंद्र उसकी समस्त कलाएं देखती हैं, वो भी पूरी कला नहीं देखती। चंद्र पूरा दिखता है, पूर्णिमा के दिन आधा दिखता है, सामने वाला आधा दिखता है, पीछे वाला दिखता है, पीछे वाला नहीं दिखता है, केवल आधा ही दिखता है। कभी पूर्ण रूप से गोलाकार दिखता है, इसलिए उसको पूर्ण चंद्र मान लिया। ऐसे ही पूर्ण चंद्र के रूप में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और इन्हीं के अंश या कला सद्रूप वैभव अवतार, ये जितने भी अवतार अधिकांश रूपों में 24 अवतारों की बात बतलाई गई भगवान को 24 अवतार, जिनमें राम कृष्ण राम परावर्त कहा गया है, उनको परावर्त कहा है। कभी राम इत्यादि जितने हैं उनके अंश और कला इत्यादि, नारायण द्वारकाधीश इत्यादि से आरंभ कर बलदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और नीचे में जितने भी अवतार हुए हैं, ये सब कृष्ण स्वयं रूप हैं भगवान, इनके अवतार मानते हैं। भागवत इत्यादि में सब में ऐसा ही कहा गया, सर्व अवतारी समस्त अवतारों के वो मूल अवतारी हैं, सर्व कारण प्रधान समस्त कारणों के भी ये प्रधान है। अर्थात सर्व कारण माने क्या, उस जगत के जीव जगत के और ब्रह्मांड जगत जितने भी कारण हैं, समस्त कारणों के मूल कारण अच्छे पानी। पानी कैसे हुआ, पानी तो हम देखते हैं, किंतु पानी का कुछ कारण तो कैसे पानी बनता है,
रस गुण
क्या क्या चीज मिल करके, ऑक्सीजन और क्या क्या
मिलता
है, वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से प्रकृति से आया, प्रकृति कहाँ से आई, कर्णाब्धि साई से, कर्णाब्धि साई कहाँ से आए,
नारायण
मूल आम वो महासंकर्षण, महासंकर्षण कहाँ से आए, बलदेव जी से, बलदेव जी कहाँ से आए, इसी तरह से सब जितने भी कारण हो सकते हैं, सब कारणों के मूल कारण वही है। अनंत वैकुंठ जितने भी वैकुंठ हैं और अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड, यहाँ सवार आधार सबके आधार मूल कारण ये है। सच्चिदानंद संग ब्रजेंद्र नंदन सच्चिदानंद ब्रजेंद्र नंदा सब चीत और आनंद से युक्त, सब मैंने सब के अधिष्ठात्री बलदेव प्रभु, उसे संधिनी शक्ति और उसे जितना रूप वैकुंठ जगत में, जीव जगत में और इस ब्रह्मांड में माया जगत में जितने भी रूप देखे जाते हैं, जो कुछ देखा जाता है वो सब संगनी शक्ति से होता है, ये बलदेव प्रभु जी से और बलदेव प्रभु कृष्ण से निकलते हैं। और किस माने होता है ज्ञान, जानना। बच्चा जन्म से ही उसका एक शरीर होगा और वहीं से जानना आरंभ करेगा, जहाँ ज्ञान का विकास हुआ ना, इसीलिए ये कौन, ये क्या, वो क्या, जो कुछ देखेगा वही पूछेगा जैसे ये क्या है। ये ज्ञान और आनंद, आनंद भी चाहेगा, सभी आनंद चाहते हैं, सचित आनंद की जहाँ इसकी परिपूर्णता पूर्णतम अवस्था है, उनका नाम प्रज्ञा नंदन। संदिग्ध संधिनी और प्लादिनी, इसके अधिष्ठात्री देव बलदेव प्रभु, राधिका और कृष्ण, तीनों के सम्मिश्रण होकर के ये ब्रजेंद्र नंदन चाहे। सर्व ऐश्वर्य, सर्वेश्वर्य और सर्वशक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं सब शक्ति और सब रसों से ये परिपूर्ण है। सर्वशक्ति, सर्व ऐश्वर्य, नारायण चारी में जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब इनमें है, उससे भी परिपूर्ण मात्रा में है, पूर्णतम मात्रा में सब शक्तियां हैं। ये समस्त शक्तियों के आधार है और सर्वरस पूर्ण, ये ऐश्वर्य और शक्तिमत्ता की दृष्टि से राम, नृसिंह, बामन, तुलसी, नारायण सबको एक अद्वैत तत्व माना गया। किंतु जहाँ रस का विचार होता है, रस के द्वारा ही इन सद्रूप वैभव अर्थात अवतारों की श्रेष्ठता माने वैशिष्टता प्रतीत हो। नारायण भी सर्वैश्वर्य है, कृष्ण में थोड़ा सा ये है कि परिपूर्णतम मात्रा में, किंतु है सभी, राम में भी है, नृसिंह में भी है, एक ही तत्व है, दो तत्व तो है ही नहीं। किंतु यदि कहा जाए जो कृष्ण में जो चीज है नृसिंह देव में भी वही है या राम में भी वही है तो कुछ गड़बड़ी हो जाए। यदि कहें ये है तो राम में और नृसिंह में पूर्ण प्रकाशित नहीं है तो भी ये चीज है। क्यों नहीं थी? राम उसी का नाम है,
ये प्रकाश नहीं है तब
नहीं, तभी इनका नाम राम। कृष्ण में ये सब चीजें हैं, जब अढ़ाई रस प्रकाशित होता है उनको राम कहेंगे, ये बात तो ठीक है ना? ऐसे समझने की चेष्टा है। कृष्ण परिपूर्णतम है, उनमें 12 रस हैं और सर्व शक्तिमत्ता भी है और सर्व शक्तियां भी इनमें है और सर्व ऐश्वर्य भी है। अब इनमें से भगवान अघटन घटन प्रत्यक्षी सर्व शक्ति से युक्त हैं। जब वो करते हैं भगवान कृष्णचंद्र, उनमें सभी रस सर्व शक्ति सब कुछ है, वो अपने शक्ति में से कुछ शक्तियों को प्रकाश करते हैं और अढ़ाई रसों को ही प्रकाश करते हैं। कौन? शांत परिपूर्ण रूप में।
हम तो पूरा दस पूरा डॉक्टर वास्तव का होता,
तब इनको अढ़ाई रस कहा जाएगा, मैंने मुख्य रसों का और
दोनों
रस सब हो सकते, मुख्य रस का ये अढ़ाई रस। इसलिए कोई कहे कि रामचंद्र जी में सब रस है किंतु प्रकाशित नहीं करते, तब तक गड़बड़ हो जाए। राम उसी का ही नाम है, कृष्ण का नाम है। जब वो अढ़ाई रस को प्रकाशित करके अपने पापी को अच्छा भी रखते हैं, निसिंह रूप है। निसिंह में कितना है? शांत है और दास्य, यही दो प्रकार है। वो भी दास्य परिपूर्ण रूप में नहीं, बल्कि उनमें रोग रस इत्यादि, भयानक इत्यादि में ये सब गौण रस प्रकाशित अधिक है। तो ये निसिंह रूप में कोई मधुर रस की कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा उनमें है किंतु प्रकाशित नहीं, ऐसा भी मत करो। कृष्ण में है, जब वो केवल इतने ही रसों को, दो रसों को और गौण रसों में भयंकर और वीर और रौद्र भयान, इन तीनों को अधिक प्रकाश करते हैं, तब उनका नाम कृष्ण ही सब रस हैं और सब अवतार हैं। कृष्ण में ही जैसे चंद्र में अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी ये सब कल्पित होती है, ऐसे कृष्ण में ही ये सब चीजें कल्पित, कृष्ण ही मूल है और उनमें ही लोग करते हैं। ये दिखता है क्यों? यदि प्रहलाद महाराज जी होते कृष्ण लीला के समय में तो वो कृष्ण को निसिंह रूप में प्रस्तुति करते। हनुमान जी कृष्ण को जब देखेंगे तो वो राम रूप में उनकी स्तुति करेंगे, उनको राम ही दिखाई पड़ेगी। इसलिए द्वारका इत्यादि में जब हनुमान जी गए तो उनको उसी रूप में दिखते। तो सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सब रस पूर्ण ये कृष्ण है, इसी के लिए बताया गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम दीजे जार उपास, ये जो स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन या यशोदा नंदन या राधा कांत, ये जो स्वयं कृष्ण है, ये वृंदावन में अप्राकृत नवीन मदन है। मदन दो प्रकार का, एक प्राकृत एक अप्राकृत और एक अप्राकृत। इस जगत में उसको काम कहते हैं और उस जगत में अप्राकृत काम या नवीन मदन उनको कहते हैं, अनंग भी कहते हैं। दोनों में अंतर यह है, जगत वाला काम नरक में ले जाता है और इंद्रियों में कभी कभी उत्पन्न हो करके शुद्ध कर देता है समस्त इंद्रियों और सब समय नहीं रहता, कभी कभी वो प्रकट होता। और अपराकृत मदन है वो सब समय आत्मा को शुद्ध करता है किंतु तो कभी उतरेगा नहीं उसका नशा, और कृष्ण के प्रति होगा, ये होगा जड़ के प्रति और वो होगा कृष्ण के प्रति, और उसका नशा कभी नहीं उतरेगा, इसका उतर जाएगा कभी मारपीट से पीट करके अपमानित करके जेल में डाल दें या कुछ और भी हो जाए तो ये नशा उतर जाएगा, उसका नशा किसी प्रकार से नहीं उतरेगा। अब सब समय सेवा भाव में और निस्वार्थ होता है और नव नवायमान होता है, वो काम गायत्री काम बीजे जार उपासना, काम गायत्री और काम बीज के द्वारा जिनकी उपासना, वो स्वयं काम है। कृष्ण का नाम ही है काम, काम माने क्या? जिसकी कामना की जाती है उसको कहते हैं काम। अभिलाषा जिस वस्तु की होती है, सबसे श्रेष्ठ अभिलाषा क्या है? कृष्ण ही, क्योंकि वो सबसे सुंदर हैं, सबसे मधुर हैं, सबसे उदार हैं, सबसे बड़े कृपालु हैं, सब प्रकार से वो सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए उनकी यदि के प्रति हमारा काम हो वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, तब हमारा स्वरूप भी चरितार्थ हो जाए। जब तक वो नहीं मिलते हैं तभी तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं, चाहे जहाँ भी चले जाए। जैसे गोप कुमार का जब तक नहीं मिले उनको वैभव मिलता गया, पृथ्वी में बड़े धनी हुए, फिर इंद्र बने, ब्रह्मा बने, ऊपर तक चले, कहीं भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। सनक सनंदन, सनक कुमार इत्यादि के यहाँ भी गए, ब्रह्मा के निकट गए, फिर वहां से शिवलोक में गए, इसके बाद वैकुंठ गए, रामचंद्र जी के यहाँ गए, फिर द्वारकापुरी गए, मथुरा आए, कहीं नहीं उसकी तृप्ति हुई। अंत में जब कृष्ण से मिले तो उनकी शांति। उसी तरह से जीव मात्र के लिए जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक उसको कभी भी शांति नहीं देगा। कृष्ण का सर्वोत्तम रूप है कहाँ? वो आस्वाद्य और आस्वादक दोनों दो रूप मिलता है। लेकिन कैसे हैं? एक रसिक है और एक रस है। जब रस है तो आस्वाद्य है और जब रसिक है तब आस्वादन करते हैं, करता। जब रस स्वरूप है तब आस्वाद्य है, तब वो रस के विषय हैं, दूसरों के द्वारा आस्वादनीय है उनको। और जब वो रसिक शेखर है तो रसिक शेखर होने पर आस्वादन किया जाता है। तब द्वादश रसों के जो आश्रय हैं उनके अंदर में जो प्रीति है उसका वो आस्वादन, उसका आस्वादन, तब वो आस्वादक है, तब रसिक है। रसिक और रस में, असाध्य और असाधन में ये उनका ये भाव। यदि इनको कोई रस पूर्वक आस्वादन करना चाहता है उनको असाध्य मान करके, तो क्या करना होगा? काम गायत्री और काम दीप से उनकी उपासना करें। पहले होगा काम कृष्ण मंत्र और इसके बाद में होगा काम काम भी, और इसके साथ में जो करना पड़ेगा काम गाय, तब जाकर के उनकी उपासना से उनको ये समझ सकेंगे कि कैसे वो रस स्वरूप है और कैसे वो रसिक है, तब दोनों की उपलब्धि होगी। ऐसे नहीं है, काम गायत्री में बतलाया गया साढ़े 24 अक्षर, और ये अक्षर साढ़े 24 अक्षर ही एक एक चंद्र माने कृष्ण के अंग रूपी चंद्र है। तो ये चंद्र कितने हुए? तो ये साढ़े 24 एक एक चंद्र माने पूर्ण चंद्र है, इसमें आधा कोई नहीं। चंद्र के दृष्टि में पूर्व परिपूर्ण है, इसलिए साढ़े
24
साढ़े 24 ही हुए चंद्र, जितने अक्षर है उतने चंद्र है, आधा अक्षर है ना,
आधा को भी पूरा कर दिया गया,
वो पूरा मान लिया गया, आधा ही है किंतु चंद्र की दृष्टि से वो पहुंची है। कैसे है भाई? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आराधना, बिना आराधना किए हुए ऐसे ही हम कहने से भी समझ में नहीं आए। उसमें बतला रहे हैं ये कैसे, पहले गायत्री है, ब्रह्म गायत्री जिसके इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और एक दो नहीं, और इसके देवता भी बहुत से हो सकते हैं, सूर्य भी हो सकते हैं, सविता है ना, और अग्नि भी हो सकती है, इंद्र भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो, बहुत से इसके देवता, इसलिए शिव उपासक भी ये करते हैं ना, तो इसको शिव का मंत्र कहते हैं। इस मार्गों में जो सूर्य उपासक है उसको सूर्य उपासना का मंत्र कहते हैं, विष्णु की उपासना करने वाले उसको विष्णु का मंत्र कहते हैं। जैसे ओमकार है ना, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, इस संले करके विष्णु को बीच में करके शंकर उनको दोनों सहायक है, इस रूप में उसके लिए इसके बहुत से अर्थ भी। जैसे जैसे देवता बदलते जाएंगे, जिस जिस देवता के लिए वो किया जाएगा उसका अर्थ भी वैसे ही होगा। इसलिए समस्त भारत वर्ष में जितने भी ब्राह्मण लोग क्षत्रिय लोग बैठे हैं, गायत्री मंत्र जरूर करते हैं। आजकल स्त्रियों को भी दिया जाने लग गया, यहाँ तक की जो कुछ नहीं जानते उनको भी मंत्र बाजार का वो सूत्र खरीद कर धागा खरीद करके बस लपेट देते हैं। वो भी हो, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, करीब 10-12 वर्ष पहले की 15 वर्ष पहले श्री राम शर्मा ने कराया, अब तो वो दिवंगत हो गए। बड़ा भारी मेला लगा था, उसमें 1008 यज्ञ कराए और जो आ गया चीटी से लेकर के बैल गधे घोड़े बाजार में, उस समय में धागा खत्म हो गया, सब खत्म, कोई धागा नहीं, और सबको दे दी और सब ब्रह्म में लीन हो गए। इतना कह देने इसे कहते हैं होने पर भी काम गायत्री जो है उसका एक ही महत्व अर्थ है, दो अर्थ नहीं होगा। काम गायत्री वो कृष्ण कर्तृक तो किसी में लागू होगा ही नहीं, किंतु है उसी का परिपक्व ये भाव। ब्रह्म गायत्री अस्तुत है और उसी का यह सिद्ध स्वरूप परिपक्व फल या रसमय ब्रह्म, ये दोनों एक ही चीज को डिनोट करता है। एक ही चीज के लिए ब्रह्म गायत्री ही परिपक्व अवस्था में, सिद्ध अवस्था में काम गायत्री, तब यह रसमय होती है। उसमें सूर्य लिया गया, कहीं कुछ लिया गया, और उमा से ये सब बहुत से सब तो सब लिए गए। इसमें वही ओंकार जो था प्रणव, उपासना करते करते भक्तों के हृदय में वो पुष्पित पल्लवी और फल से युक्त होने पर वही काम बीज हुआ। इसमें काम बीज होने पर रस, जैसे कच्चा आम है, कच्चा आम में सभी कुछ पके आम में होता है, किंतु वो सब रसमय हो जाता है, इसलिए रस एक बढ़ गया। इसी प्रकार से इसमें उसमें तीन था ना, उम, अब इसमें हो गया सौ और ई अनुसार, ये चार इसमें एक रस बढ़ गया। अब इसके साथ में अब इसमें कृष्ण मंत्र भी इसी के अंदर है, वो भी आ गया है। कृष्ण काम गायत्री वो भी आ गया है, ये बतलाना नहीं चाहिए, तभी अभी फल के ढंग से बतला देता, फल के ढंग, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग दीक्षित है, इसलिए थोड़ा सा बतला पूरे ढंग से नहीं बतला, जिसको जानना होगा वो स्पेशल रूप में वो सीखेगा सब। अभी साधारण ढंग से कल ई अनुस्वार वो ओम ओम ही यहाँ पर हो गया, और बाकी जो तीन चरण है गायत्री वाले में ब्रह्म गायत्री का, वो तीन चरण इसमें भी आ गए। आ करके पहले कृष्ण मंत्र हुआ और कृष्ण मंत्र का फल लग गया काम गायत्री, वो काम काम मन ही फल होता है, वो फल जैसे कल ई अनुस्वार है, क मने सच्चिदानंद सी नंदनंदन ब्रजनंद नंदन श्याम सिंह, और बी का बी माने गृही का ये शक्ति है, शक्ति हुई सर्वशक्ति सब सब शक्तियों की मूल शक्ति कौन है, लक्ष्मी स्वरूप की बात है। तो ई का अर्थ हुआ राधा जी और ल हुआ दोनों के मिलन में जो रस उत्पन्न होता है उनका जो विलासमय जो भाव है ये हुआ ल माने आनंद आह्लादनी से, ये दोनों का मिलन का ये ब्रह्म और ओंकार में ये चीज नहीं है। और ये जो है वो क्या है, उसमें जो आनंद मिलकर के दोनों से जो उत्पन्न हुआ वो ये हुआ विलास और उन दोनों का जो मिलन का जो आनंद है वो हुआ चंद्रबिंदु। अब उसमें पहले मंत्र है कृष्ण मंत्र में कृष्ण है गोविंद है और गोपी जन बल्लभ एक है संबंध एक है अभिधेय एक है प्रिय संबंध है कृष्ण सब की सुंदर रूपवान गुणवान है रूपवान गुणवान और सुंदर से ही संबंध होता है और सभी चाहते हैं इसलिए मदन मोहन जो है वही यहाँ पर कृष्ण है वो जगत के साथ में संबंधित सब जगत को प्राणियों को मोहित करने वाले ये समस्त जितने भी अवतार हैं सबसे सुंदर और यही वो को माने इंद्रियों को उत्फुल्ल करने वाले हैं आनंद से प्रमत्त करने वाले हैं सब वही कृष्ण मदन मोहन जी गोविंद के रूप में अनुभूत होते हैं समस्त इंद्रियों के द्वारा हृदय को भी उल्लास करने वाले आनंद नैनों को भी कर्णों को भी समस्त इंद्रियों के वो विषय और सबसे उनकी सेवा इसलिए वही गोविंद हुए। आप गोपीनाथ कौन है ये प्रयोजन सत्य है बंसी भट्टता स्थित कर्कम बेन समय गोपीनाथ वो समस्त जीवों को प्राणियों को अपने बंसी से और अपने रूप से सबको आकर्षित करने और उनको आनंद देने वाले ये गोपीनाथ। अब इन तीनों को ले लो इसमें काम गायत्री में पहला है पहले जो मदन मोहन जो है संबंध के देवता अब यह कर्म मदन मोहन जो अब ये काम माने वही काम के अधिष्ठात्री देवता वही जगत में सबसे अधिक अभिलषणीय है वही काम करूँ
तो ये काम दे समुद्र अभिदेवता
अब वहां यहाँ करके परिपक्व रूप में यहाँ कर लो काम ये काम भी और दूसरे से संबंध वाले गोविंद जी सेवा को ग्रहण करने वाले समस्त रसों को के जो विषय और आश्रय दोनों हैं कौन है विषय और आश्रय कृष्ण। अब ये यहाँ पर जो गोविंद है सब रसों में इनकी आराधना हो सकती है और सब रसों के ये प्रापक ग्रहण करने वाले हैं आस्वादन करने वाले भी आकाश भी हैं। अब ये हो गए यही हो गए ये अभिधेय हो गई यहाँ और उसके ऊपर जो
आनंद
उसमें थे
गोपीनाथ
गोपीनाथ गोपियों के साथ में विलास करने वाले समस्त रसों के मूल आश्रय विग्रह और सब रसों का आस्वादन करने वाले गोपीनाथ जी अब यहाँ पर हो गए और समस्त जगत को प्रमत्त करने वाले थे। अब उसने बतलाया कि ये काम गायत्री से उनकी उपासना होती है केवल काम गायत्री से नहीं उसमें बीज से जोड़ दो तो बीज से जोड़ने पर ये पूरा मंत्र हुआ उसमें। अब देखो ब्रह्म गायत्री भी आ गई और कृष्ण मंत्र भी इसमें आ गया। इसलिए ब्रह्मा जी को पहले कृष्ण ने योग माया के द्वारा गोपाल मंत्र लाखों वर्ष तक उनकी आराधना की। जब परिपक्व उनकी आराधना हुई तो कृष्ण ने अपने बंसी के ध्वनि से इनको कैसे दिया, तीन स्वरों में दिया, तीन तालों में स्वरों में दिया। इसलिए त्रि है, आठ आठ अक्षरों का एक संघ, एक एक स्वर यहाँ हुआ और हो करके तीन चरणों में जिसका गान करने पर विश्व के समस्त लोगों का तरण तारण दोनों कर गए और अपने को उसमें काम के रूप में प्रकाश कर दो। ये है काम गायत्री। अच्छा, इसको कृष्ण गायत्री कहने से हर्ज क्या था?
जब संबंध लगन हो जाएगा
इसको काम गायत्री कहा। यहाँ पर कृष्ण से भी बढ़कर के नाम, ये जो काम है ये मधुर भाव में ही केवल ये ग्रहण किया जा सकता है। कृष्ण की चरम
परिणति
या सर्वोत्तम अवस्था का नाम काम, वही कामदेव अनंत के रूप। इसलिए काम गायत्री कहा, उसी से उसी उपासना। इसमें सनातन शिक्षा में ये बतलाया गया कि वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जब इसकी व्याख्या करने के लिए गए तो उनको पता नहीं जैसे भाई ये 24.5 अक्षर इसमें कैसे हुए। या तो होगा ना स्त्री को छोड़ दो तो होगा 25 और उसको ले लो क्लीन को तो हो जाएगा 26। उसमें भी अंत में जो है ना
आधा तो
काम दुआ या तो है ना, या और तो को अलग अलग कर लो तो 26 हो जाएगा और या तो एक ले लो तो 24.5 होगा,
25
होगा। तो 25 में से कौन सा आधा है जो 24.5 होगा नहीं समझ रहे, ये समझना भी बहुत कठिन है। हम लोग को ये बतला दिया भी जाए कि कौन कौन सा स्तर क्या है तो अभी हम लोग फिर समझ में पीछे नहीं जाए। अब ये कह रहे हैं राधा जी ने उनको स्वप्न दिया और उसमें प्रकट होकर के उनको कहा क्या वर्णागम
भक्त
व्याकरण में इसको बतलाया गया है कि बी के पहले जो यकार होगा वो अन। उन्होंने पुष्प आकर के खोजा, ढूंढने के बाद भी मिली और उन्होंने देखा उनका संशय थी। और साधना करने के बाद में उनके एक एक अक्षर 24.5 अक्षर होना चाहिए और ये 24.5 चंद्र है। ये कैसे हुआ चैतन्य के सामने वहां बताया गया। मुख चंद्र जो है मुखिए ये पहला चंद्र और सबसे श्रेष्ठ है। ये समस्त चंद्रों का ये मालिक
राजा
है। 24.5 चंद्र है उनमें ये मालिक कौन है, राजा कौन,
मुखचंद्र।
अब इसके बाकी सब परिषद चंद्र है, सब परिषद चंद्र है। परिषद माने परिवार, परिवार। फिर मुखचंद्र के बाद में बतलाया दो गंड माने
पूर्ण,
तो ये भी दो पूर्ण चंद्र हुए। तीसरा हुआ ना, और चौथा बतलाया लला, इसको बतलाया अर्थ, अर्थचंद्र। और उसके बीच में जो ललाट में जो बिंदी होती है ये पूर्ण किंतु है। ललाट को आधा क्यों कहा, ये केतु से आधा ढका हुआ है और है ना अष्टमी का चंद्र इसको माना गया। अश्विनी का चंद्र क्यों माना गया, वो स्पष्ट होती है और आधा मैं 16 का आधा कितना हुआ 8 हुआ ना। 16 चंद्र की 16 कलाओं में से जिस दिन आधा होगा अष्टमी को तो वो आधा चंद्र हुआ, इसलिए अष्टमी का चंद्र मान लिया गया ये गला। और उसमें यहाँ जो बिंदी है उसको पूर्ण मान, ये हुआ 4.5। पहचान मुख 1, 2, 3, 4 पूर्ण वाला 4 और आधा हो गया 4.5 और बाकी जो रह गया 20, 10 ये नख और 10 ये नख, ये 4.25। इसमें से एक एक चंद्र का वर्णन करते हुए आधा जो ललाट है कोटि उसमें जो ये है न इसी स्थान पर है, जब अच्छी तरह से विचार करेंगे तो देखेंगे ये इसी स्थान पर ललाट के स्थान पर ही वो अर्ध, किंतु अर्ध चंद्र होते हुए भी वो पूर्ण है, इसलिए 4.5 के लिए नहीं वो 24.5 में आधा वाला भी पूर्ण है, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं अखंड है, पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णात पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव पूर्णमादाय पूर्णमेव पूर्णमेव अस्ति, वो परिपूर्ण है, उनका आधा तुच्छ नहीं, उनका एक अंश और कला भी है वो परिपूर्ण है। इसलिए काम गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री का परिपक्व और रसमय स्वरूप है, उसमें ये सब विलास नहीं है, उसमें जगत की सृष्टि का व्यापार है, भूर्भुव असह महाजन तप सप्तकार सृष्टि जिससे होती है और जिससे ये सब प्रकाशित होते हैं, जिस तेज के द्वारा प्रकाशित होते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। और यहाँ पर क्या हो गया, जो विलासों से परिपूर्ण जो है, जो अपनी शक्ति के साथ में अपने समस्त शक्तियों के साथ में परिपूर्ण रस में जो विकसित हैं, उनकी उपासना का किसी ये एक दो दिन का काम नहीं, इसकी उपासना यदि ठीक से इसकी उपासना अपने आप अपने स्वरूप को ये प्रकट करते चले। गायत्री भी वैसे ही है, गायत्री भी प्रकाशित होने में नहीं कितने जन्म लग जाएगा, किंतु ब्राह्मण मात्र को बीज मात्र को बीज मैंने ब्राह्मण सबको गुरु से ग्रहण करके और इसका कुछ तत्व जान करके जरूर करना चाहिए। सब हम मनुष्य किस लिए हैं सब कुछ समझेंगे इन्हीं सब चीजों के लिए, जो तत्व से नहीं समझ कर तुम नहीं करेंगे तो कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी, कुछ देने के बाद उनसे और ऐसे समझ बुझ करके करेंगे उसमें श्रद्धा आएगी, फिर निष्ठा आएगी, रुचि आएगी और वही मंत्र कृष्ण के रूप में, ये मंत्र नहीं है ये राधा कृष्ण का ये स्वरूप है, ऐसा समझ करके और ये सर्व अंतर्ज्ञानी और वृंदावन के नवीन मदन सर्व कारणम सर्व शक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय ये नाम, ऐसा समझ करके फिर कहते हैं पुरुष ज्योति किंबा सावर जंगम सब चित्ता सत्ता मन मन मनमत मनमत मदन पुरुष हो या ज्योति हो नारी हो अथवा सावर जंगम भी क्यों न हो, सावजन मैंने पेड़ पौधे कीड़े पकौड़े जो कुछ हैं सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं और साक्षात मनमत के भी मदन स्वरूपी है कौन काम गायत्री अथवा कृष्ण दोनों के, ये दोनों एक ही स्वरूप है, दो नहीं है, अभी मंत्र के रूप में देखता है देखते हैं। नाम मंत्र कृष्ण और कृष्ण स्वरूप सभी एक है। कृष्ण का स्वरूप कहो, मंत्र कहो, नाम कहो, सब एक ही है। किंतु होता क्यों नहीं? अभी हम लोग कृष्ण नाम करते हैं, क्यों नहीं दिखता है? दिखता क्यों नहीं है? जैसे हम लोग अभी बद्ध अवस्था में हैं, संसार के जीते जीतने हैं जो बड़े प्रिय और मनोरंजन लगते हैं, मनोहारी लगते हैं, है? इस जगत से जैसे क्रीड़ा है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और दूसरे खेलना धुलना। आजकल यूरोप में फुटबॉल खूब जोर से हो रहा है, कहीं क्रिकेट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये मनोहरण। किंतु हम लोगों को तो कुछ अच्छा नहीं लगता ये सब, बल्कि देख करके इधर से आंख बंद कर। क्यों? इसी तरह से इस जगत में सब कुछ मनोहारित तो नहीं लगेगा। जब तक हम बद्ध हैं तब तक ये जगत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, किंतु जब ही अप्राकृत वस्तु कुछ कुछ अनुभूति का विषय होने लगती है तो ये संसार का सब कुछ। यहाँ तक कि परिवार, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, जो कुछ भी है सब ये विश्व की सृष्टि करने वाले शंकर हैं ना? शंकर जी इस रूप से मुग्ध नहीं होते, ये विश्व के रूप को देख करके यहाँ तक कि कामदेव को भी जला दिया ना? किंतु उन्होंने जब मोहिनी रूप के लिए प्रार्थना किया तो अप्राकृत जगत की एक झलक थोड़ी सी दे दी। अप्राकृत जल गई या कहो ये महामाया का ही झलक दे दी। और शंकर जी ने उसे देखा और शंकर जी कैसे हो गए? एकदम उन्मत्त हो गए। इतना उसमें रूप है, इतना उसमें माधुर्य है। जो लोग अनुभव नहीं करते वही लोग भजन नहीं करते। जिनको थोड़ा सा भी अनुभव है ना, वो भजन छोड़ करके जगत में कभी भी नहीं जा। चैतन्य महाप्रभु जी की विश्व सुंदरी स्त्री, आज उनकी शादी हुई वहां जन्मभूमि में, अभिनय शादी। महाप्रभु उनके साथ में बड़े सुख से रह रहे। कुछ दिनों के बाद में गया गए, गया गए काजी कैसे उनके गुरु मिल गए, ईश्वर पूरी बात कैसे व्यक्ति नंग धड़म, जिसका कोई भी विषय उनके पास में रुपया है नहीं, खूब सुंदर होंगे वैसा भी नहीं, बूढ़े थे, बस हरे कृष्ण करते थे और आंखों से सब समय आंसू प्रवाहित होते थे। उनसे भेंट हो गई, महाप्रभु जी ने उनको देखा और कहा आज हमारा पृथ्वी साथ में इत्यादि जिस काम के लिए गया मैं आया,
तो सब हो गया।
आज आपके दर्शन से कोटि कोटि माता पिता का साथ हमारा आज हो गया जथा। अरे मैं अब तक क्या कर रहा था, संसार के वैभव में लुप्त हो रहा था, कितना मैं मूर्ख था। महाप्रभु जी वही मैंने विचार कर है भगवान, किंतु अभी नरलीला के अनुसार में चल, मैं अभी संसार घोर में चल रहा था। आज इनके दर्शन से और इन्हें जो मंत्र दिया आज मेरा जीवन प्रसाद है। जो पढ़ने वाले निमाई थे पंडित निमाई वो बदल गए,
भावुक निमाई
और हो गए कैसे,
भावुक निमाई
भावुक निमाई हो। और जो जा रहे थे घर घर मैंने विषय की तरफ में, संसार की तरफ में, वो वहां से मुड़ करके चले जाने जा रहे हैं दर में। और सब समय क्या करें, कहां वो प्राणनाथ मुरली बदल, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं प्रजन निरंतर, प्रजन निरंतर बिना फाटे मो सब तुम्हें। ये झूठ मुख को रो रहे हैं, इतने वैभव में फले और विश्व के श्रेष्ठ सुंदर महाप्रभु जी और उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदरी, और सबको छोड़ करके रोने लगे। क्यों? इसे देखा ना ऐसे ही रोने लगे। देखा जैसे बिल्व मंगल ने कृष्ण को देखा ना, भक्त लोग ऐसे ही देखा और सब कुछ त्याग कर। उसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं उनका, ये दो तीन श्लोकों में अभी वर्णन करेंगे कैसे वो सुंदर हैं, कैसे रूपवान हैं, कैसे गुणी हैं, सबका चित्त कैसे विमोहन करने वाले होते हैं ये कृष्ण, जिनकी उपासना काम गायत्री से होता है। उसके लिए सासाम सौरी मैं मान मुखाम ठीक काम कर मन मत सत्ता मत। ऐसा सुंदर उदाहरण करके जगत के समस्त प्राणियों को मुग्ध करने वाला मनमत के भी मन को, असत कामदेव के भी मन को मथन करने वाले ऐसा सुंदर रूप प्रकाशित किया। नाना भक्त रसाम नाना भी इसकी व्याख्या हमने पहले सब की है, इसलिए आगे चलो। नाना भक्त रसाम इसको समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए। उसमें विश्व की सबसे सुंदरी गोपियां हैं, कहते हैं किशोरी हैं, रूप गुण में सबसे श्रेष्ठ रहने वाली वो वहां उपस्थित। सबने अपना अपना एक आसन उनके लिए बनाया, एक एक दल की गोपियों ने अपने उत्तरीय बसन उन पर रखे। और गोपियां वो जो अभी विरह में तड़प रही थी उनके निकट आ, विशेष करके चार उसमें प्रसिद्ध हैं, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और वो सब वहां पर उपस्थित। किसी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उनके तरफ में देखने लगी। मतलब क्या? आप कैसे निष्ठुर हैं जो हमें छोड़कर के असहाय अगला बनाकर और रोते भी छोड़कर के आप अंतर। किसी ने पैर पकड़ लिया और अपनी गोदी में रख ली, ये एक तरह की गोदी। और किसी कोई
काफी ध्रुपदी वस्त्र
अभी तीसरी थी
वस्त्र के स्थल पर अपने चरण के धारण कृष्ण के चरण,
कृष्ण के चरण को अपने बंधक स्थल इत्यादि पर धारण करके और उनकी तरफ में देख रहे। और कोई कोई गोपियां बहुत दूर से निकट नहीं आई, उनके तरफ में ध्रुपदी से देखने लगी और मुख भी वैसा कुछ रोष पूर्ण। इसमें कुछ वाम्य भाव वाली, कुछ दक्षिण भाव वाली, कुछ सुहित पक्ष वाली, तटस्थ वाली, वो सभी और श्रीमती राधिका जी जो है और उनकी जो सहेलियां हैं दूर से उनकी तरफ में कुछ रोष पूर्वक कुछ मान के साथ में देखते हैं आप कैसे हैं। और उन्हीं लोगों ने पीछे से प्रश्न किया था, प्रीति करने पर जो प्रीति नहीं करते, प्रीति करने पर जो प्रीति करते हैं,
करे और न करे नहीं
करे, और नहीं करने पर भी जो प्रीति करते हैं, फिर करते ही नहीं है, उनमें से आप प्रभु कौन से हैं? उनसे सब ऐसे प्रश्न किए। वो सब भागवत कारक लिए सब कैसा ये सब विषय है, बिना अच्छी तरह से पढ़े बिना किसी अनुसंधान किया बिना अच्छी तरह से नहीं जाएगा। आप करें नाना विध भक्त, विशेष करके पांच प्रकार के भक्तों में से रसामृत नाना विध भक्तों भक्त भक्तों के भक्तों में नाना रसामृत नाना विध और रस का जो अमृत है तरह तरह के अर्थात पांच प्रकार के शांत दास्य सत्य वास्तव मधु से सब रसामृत विषय आस्त, उस रस के अमृत का विषय और आस्त। ये कौन है? दो तरह, एक उस अमृत के रस भक्ति रस है, भक्ति रस के एक विषय है एक आस्त है। विषय कौन है और आस्ते कौन है? संत दस्त सत्य वात्सल्य मधुर रस वाले जितने भी भक्त हैं ये सब अस्त। किंतु जब यह कहा जाएगा जब कृष्ण ही दोनों के आश्रय और विषय हैं, सभी हो जाएगा, सभी ये चीज है। कभी कभी कृष्ण समस्त विषय रसों के आश्रय होने पर भी, विषय होने पर भी आश्रय भी होगा। जब भक्त लोग कृष्ण का की सेवा करते हैं तब कृष्ण भी और कृष्ण उसका रसास्वादन करते हैं, जैसे यशोदा जी की गोदी में बैठे हुए हैं कृष्ण और यशोदा जी उनको लाभ प्यार करते हैं, अपने स्तन उनको पिला रही हैं और उनके वात्सल्य रस का आस्वादन कृष्ण कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे क्या विषय हो जाए, आस्वादन कर रहे हैं ना? और यशोदा जी के आंखों में आंसू आने लग गए और कृष्ण का रूप गुण और उनका बाल्य भाव देख करके उसको आस्वादन करने लगी कृष्ण को देख करके, तो यशोदा जी क्या हो गई,
क्या हो गई?
जब कृष्ण उनको आस्वादन उनका रसास्वादन करते हैं तो वो विषय हो जाएंगे, और जब
यशोदा जी आस्वादन करेंगे तब विषय
तब हो जाएंगे। उसी तरह से सब रसों में समझना, जब भक्त लोग सखा लोग कृष्ण के साथ में गोचारण करने जा रहे हैं, कृष्ण कहते हैं ये सखा अरे गाय इधर उधर गई इनको जरा हाथ ले आना, तो आदेश कौन दे रहा है? और जब सखा लोग ही कहेंगे कृष्ण भैया गाय मिल रही नहीं रही, हमने बहुत खोजा अब जरा खोज लाना, तो आदेश देने वाला कौन?
सखा।
तो वहां पर सखा लोग क्या हो जाएंगे? और वो कृष्ण खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं और सब भक्त लोग अपना टेस्ट करके और कृष्ण को खिला रहे, उनका जूठा जब उनको खिला रहे हैं तो उसके विषय कौन है आस्वादन करने वाले?
सब भक्त विषय सखा विषय
वो कृष्ण विषय है और सब सखा लोग आते हैं वो खिला रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण खा रहे हैं। और जब कृष्ण खा करके देखा ये बहुत मीठा है मक्खन या कोई चीज, तो आपने मुख से निकाल दिया और सखाओं को देने लगे, सखा लोग खा करके बड़े तृप्त हो रहे हैं, तो उस समय हो जाएंगे। अब उसी तरह से मधुर रस
मैंने दोनों ही दोनों आश्रय विषय
होते किंतु फिर भी विषय कहा जाएगा कृष्ण को ही और आश्रय कहा जाएगा, हम लोग आश्रय रूप से कृष्ण को पाने के लिए साधन भजन कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो कैसे हम इनकी सेवा करने के लिए कर, इसलिए हम लोग अभी आश्रय के अनुगत में हम विषय के लिए करें, इसलिए हम आश्रय का अनुगत होकर के करें, विषय के अनुगत होने से नहीं होगा, कृष्ण के अनुगत होकर के हम भजन करेंगे ऐसा नहीं, कृष्ण का रूप चिंतन करते हुए करेंगे ना, तो कृष्ण का सादृश्य होकर के हम शत्रुबाहु हो जाएंगे या कृष्ण जैसा अल्लाह करके पहुंच जाएंगे, इसलिए उनका नहीं, हमें किसको करना है?
आपका जैसे
गोपियों जैसी सेवा प्राप्त करने के लिए गोपियों का चिंतन करते हुए यदि भजन करेंगे तो गोपियों का सादृश्य प्राप्त होकर के कृष्ण की सेवा, इसलिए गोपी भाव से भजन करना ही या सखा के भाव में भजन करना या वात्सल्य के अंतर्गत होकर के अंगत में भजन करना चाहिए। हम ये बतला रहे हैं देखो जी कैसे बहुत गंभीर विषय अखिल सामिक मूर्ति प्रतिम ऋषि तार का पाली कलित श्याम ललिता जय, ये भक्त सामिक सिंधु में रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में कृष्णचंद्र जी की मंगलाचरण किया, ये मंगलाचरण का पहले बताया विभुर जयती, विभुर जयती मैंने
चंद्र जय
विभु की जय हो, विभु माने होता है विभिनोती खंडयती सर्व दुखम सर्व तापम सर्व अविद्या, ऐसे जो जितने भी चीजें हैं जो हमारे लिए बाधक हैं वो सब चीजों को खंडन मैंने दूर करनी, वो है दी मैंने धुनोती, विभु माने
धुनोति विशेष रूपेण धुनोति माने दूरम करोति सर्व पाप सर्व अविद्या सब सर्व अमंगलम सर्व अनर्थ ये सब को दूर करके हमको कृष्ण की सेवा के उपयोगी बनाने वाले वो है यथार्थ। और एक अर्थ है विदधाति सर्व विदधाति माने करोति लाति सर्व सुखम यहाँ विदधाति विदधाति माने करोति करोति सर्व सुखम सर्व सुखम जैसे चैतन्य इसमें शिक्षास्तक के पहले श्लोक
केतो दर्शन
मार्जनम महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयम कैरव चंद्रिका वितरण ये के पहला हुआ सब प्रकार के जितने भी दावाग्नि है इस संसार में
निर्वापन
उसको दूर करना। भगवान का नाम ऐसा है जितने तरह के ताप हैं और तापों में भी दवाग्नि और बड़वाग्नि बड़वाग्नि किसको कहते हैं एक होता है वृक्षों के घर्षण से वन में अपने आग लग जाती है। बड़े बड़े वनों में हम जाते हैं देखते हैं कि आग के मारे सब वृक्ष जल गए हैं उसमें पशु पक्षी भी जल गए हैं कैसे होता कौन आग लगाया कोई आदमी पेड़ों की डालों में डालों के घर्षण से आग पैदा हो सके और उसमें वन में आग लग जाती उसको कहते हैं दावाग्नि बड़ी भयंकर होती है किंतु भगवान की कृपा से यदि वर्षा हो जाए कुछ जोरों से तो क्या होगी
निर्वार
किंतु यदि जल में आग लग गई फाइव एलिमेंट ये पांचों में से कहीं से घर्षण होगा ना आकाश में आग लग जाती है यही बिजली है वो हवा हवा में संघर्ष हो सके बादलों बादलों में संघर्ष हो सके और उसमें से विद्युत पैदा हो जाए जो विश्व मानी इतनी शक्तिशाली होती है ये सब कुछ जला करके खा सकते तो ये जो बड़वाग्नि है इतनी अधिक भयंकर होती है भाई उसका दमन ऐसे नहीं होगा वो वर्षों में जाकर के कहीं धीरे 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 सब जाकर के वर्षों लग जाते हैं 10-20-50 वर्ष भी लग जाएंगे इससे शांत और उसमें कोई भी पड़ जाए तो क्या होगा
जहाज
भी समाप्त इसे समझ के उसका देख सुन करके तब चलते हैं ये सब ताप ऐसे ही हम संसार में हमारे बहुत तरह के ताप क्या ताप कोई रोग हो गया कोई शोक हो गया खेल खेल रहे हैं अच्छे से बड़ा अच्छा लग रहा है और लग गया है यहाँ और एक आंख अंधा हो गया तो और पैर में लग गया चोट लग गई और पैर कट गया तो हट हो गया। मैं मद्रास में सेनिटोरियम में मैं गया था कुछ दिन था वहां किसी कारण किसी भक्त की सेवा करने वहां पर प्रकृति का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर था बैट पर खेलता था कोई बोस उसका नाम वो उसमें बैटिंग मैं घूम करके रोगियों को सांत्वना देने के लिए जाया करता हम तो देख करके वो रोने लगे अभी क्यों रोते है हाँ बंगाल भर में मोहन बगान टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर अपने समय का था आज मुझे ये रोग हो गया टीवी अब मैं कोई एक कौड़ी का भी मुझे नहीं पूछता अच्छा वो कोई गुण है कोई गुरु साधारण मूर्ख लोगों के लिए ना है पीड़ा है ना वो पीड़ा उसका कोई मूल्य नहीं न तो उसके पास में पैसे से खर्च हो गए और कोई पूछने वाला नहीं घर वाले भी से नहीं कुछ दिन उसके बाद में बेचारा मर गया हमने कहा भैया किसके सुना देखो ये उससे सुनिश्चित हो जाए कुछ दबावदारी हो ही रही है और तुम्हारा आश्रय और भरोसा एकमात्र भगवान भगवान नाम है उसके कथा भी करने का हनुमान की कृपा हुई इस तरह से ये सब जगत में ताप है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ताप नहीं है और संसार का कोई भी व्यक्ति उनके तापों को दूर कर दे, वो ताप कैसे दूर होगा भगवान नाम। इसलिए हरिनाम करने पर सबसे पहले सब पापों को नाश करने वाली क्लेश रखनी भक्ति होगी। और दूसरा क्या होता है,
सुभदा।
सुभदा माने जितने प्रकार के शुभ है मंगल और अच्छे हो सकते हैं, ये नाम के द्वारा होगा। बिना नाम के द्वारा किसी का मंगल नहीं होगा और शुभ नहीं होगा। इसको गांठ बांध करके रखिए, यदि आकाश में है तो उखिल जाए, यदि बर्फ से आग पैदा हो जाए, यदि खरगोश के सिंह जग जाए, यदि यदि अंधकार तो अंधकार सूर्य को मिटा दे, किंतु भगवान भक्ति के बिना, नाम के बिना कभी भी कोई पानी मथे बरू हो, ये पानी को बिलो और उसे घी निकल जाए, ये भी मान लेंगे। और रास्ते की फूल को लेकर के उसको घानी में दे दो तो तेल भी निकल जाए, ये भी मान लेंगे। किंतु बिनु हरि भजन न पाओ, यह सिद्धांत अपे शास्त्र भी ऐसा कर रहे हैं। मेरी अनुभूति कौन कर रहा है, व्यास जी की भी अनुभूति, नारद जी की अनुभूति, अभी तक मीराबाई इत्यादि जितने लोग हैं सबकी अनुभूति, हम लोगों की भी अनुभूति उसमें ले लो। हम लोगों की भी अनुभूतियां हैं, क्योंकि कुछ कर रहे हैं ना, देख रहे हैं। सब लोग सब साथ से भूलते जा रहे हैं, हम लोग नाम के प्रभाव से।
घर में रहते थे कुछ पता ही नहीं, जब
पापों को दूर करने वाला एक और सब सुखों को देने वाला ये दूसरा, ये चंद्र का ये कारण, चंद्र के गुण है। क्या करता है चंद्र, माने विधु हुए दो, एक मूल चंद्र कृष्ण चंद्र और दूसरे चंद्र हुए अंधकार को दूर करने वाला। और एक आदमी को बहुत ये सूर्य से ताप, अभी दिन आज बड़ी गर्मी है ना, और पूर्ण चंद्र है और शीतल ऊपर रात में हवा थोड़ी थोड़ी धीरे मंद मंद बह रही, और ऊपर सब पंत हो जाओ, चंद्र उदित होने पर कैसे आराम मिलेगा। बिजली का पंखा और ये सब उतना आनंददायक नहीं होगा जितना चंद्र। दूसरी तो इसके लिए कहें, ये पैरवा कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र क्या करते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत की मूर्ति। और चंद्र क्या है, वो भी अमृत की मूर्ति है। एक समय देवता लोग ब्रह्मर्षि लोग चंद्र की उपासना कर रहे हैं। आप समस्त रसों के प्रदाता, जितनी औषधियां विश्व में होती हैं, सब में औषधियों में अमृत भरने वाले आप ही, आप ही सब चीजों को ठंडा करने वाले हैं, शीतल करने वाले। इसलिए हम आपकी सोम रस से सोम की उपासना कर रहे हैं। सोम रस क्या है, देवताओं का कोई प्रेम करने का प्रेय, उससे आपकी हम सोम की माने चंद्र की उपासना कर रहे हैं। वही जड़ी बूटियों में सब में ये सब चीजें देते हैं, अमृत देते हैं। अब ये तो चंद्र में एक अमृत देने का भी, क्योंकि वो अमृत रस में है इसलिए देते हैं।
प्राणों का संचार,
प्राणों का संचार भी करते हैं इसलिए चंद्र। और दूसरा क्या, सुख एक क्लेश को दूर करने वाले और
आनंद।
कृष्ण में क्या है, जगत में जितने प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, सबको दूर करने वाले और अंत में अपने रूप के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा समस्त जीवों को आनंदित करने वाले वो मूल विग्रह हैं। इसलिए विभूर कौन जय हो, कृष्ण चंद्र जय। चंद्रमा का उपलक्षण में केवल कहा गया, केवल उपमान है। अब वो कैसे हैं इसके लिए बस, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण की, अखिल रसामृत की मूर्ति। अखिल रसों के विषय भी हैं और पीछे से बतलाया
हस्त ही,
एक अस्वाद्य भी हैं
और अस्वाद्य भी है।
आस्वादक भी है, दोनों भी है, दोनों तरफ एक परम करुण है और दूसरे कृष्ण को यदि रसमय और क्या है वो रस राधा और कृष्ण दोनों मिल सकते
रसराज महाराज
रसराज और महाभारत तो भी कोई हल नहीं, क्योंकि राधिका के साथ सप्त में जिस तरह से इसलिए महाभाव स्वरूप भी आ गए और रसराज भी आ गए। परम करुण है इसलिए जगत में अवतीर्ण होकर के जीवों को ये सब चीजें देते हैं, अनुभूति करा है। और रसिक है इसलिए भक्तों को आनंद देते हैं और आस्वादन भी करते हैं, राधा भाव आस्वादन करते हैं। और कृपालु है इसलिए अनर्पित क्या प्रेम को ये देते हैं। तो अपन सामने मूर्ति वो प्रश्न और रुचि रुद्धकार का पाल तीन प्रकार के लोग या तीन प्रकार की गोपियां हैं, एक साधारणी, एक विशेष मुख्य और एक सर्वारा सबसे श्रेष्ठ, तीन प्रकार। इसमें राधिका जी सबसे श्रेष्ठ हैं, ललिता प्रभृति जो है अष्ट सखियां ये प्रधान और साधारणी और कोटि कोटि गोपी। अब ये तीनों के लिए कर रहे हैं अलग अलग। ऐसे कृष्णचंद जी रसामृत मूर्ति वाले हैं, परम सुंदर हैं, मनमत मनमत हैं कि प्रतिमा माने क्या होता है व्याप्त होने वाले, जैसे हवा धीरे धीरे चलते ही चारों जगत जगत में ये व्याप्त है। ऐसे कृष्ण की रुचि, रुचि माने
कांति
सौंदर्य गुण इत्यादि उनका ये उनकी प्रभा ये फैल करके क्या करती है रुद्ध तारका बाली
सबको मजबूत कर दिया।
रुद्ध मैंने बसी भूत कर रहा है, बस रोक लेती है, ठहर जाओ मैंने बसी भूत कर लेती। किनको तारका पाली गोपियों के पाली को, पाली मैंने समूह उनके समुदाय को समस्त गोपियों को साधारण गोपियों को स्तंभित कर देते हैं, बसी भूत कर देते हैं। अथवा इनमें प्रमुखा है तारका और पाली, उनको रुद्ध कर मैंने ऐसी साधारण गोपियों को रुद्ध किया। चंद्र के पक्ष में क्या होगा ऋषि रुद्ध तारका, तारका मैंने तारका और पाली मैंने समूह समस्त तारकाओं को नक्षत्रों को तारिकाओं को एकदम विशेष करके बैसाख के महीने में बैसाख होता है ना, वैशाखी इसलिए कहा जाता
है
जब विशाखा में सत्र के एकदम निकट में उसके ऊपर में चंद्र आ जाते हैं तो उसको कहते हैं वैशाख में। इसी तरह से सब में है, बारह महीने में बारह विशेष ग्रहों के निकट में चंद्र आने पर उनका नाम वैसा ही रख जाता है, महीने का नाम ऐसा ही। तो ये वैशाख महीने में आते हैं तो सबसे कम दूरी पर विशाखा के पास में पहुंचे और ऐसा कभी भी किसी भी बारह महीने में किसी के निकट नहीं जाते, इसलिए विशाखा के ऊपर में किंतु चंद्र समस्त ये ताराओं के बीच में रहते। यदि रात न हो और अंधकार न हो तो तारा सब दिखेंगे, नक्षत्र मंडल भी दिखेगी नहीं, किंतु जब अंधकार थोड़ा रहता है तब चंद्र के उदित होने सब दिखते हैं, उनको खतर के रखते हैं। इसलिए तारका पाली किली तो श्यामा ललित तो कली, यहाँ पर किली की लिखी है कली तो श्यामा ललित, कलित माने क्या है आत्मसात कर, आत्मसात माने क्या है
अपना
प्रियत्व हेतु एकदम अपना लिया है, इसलिए यहाँ पर श्यामा और सुहित और नहीं ललिता है
ललिता
सब पक्ष और सुहित पक्ष उनकी जो प्रधाना है उन दोनों को आत्मसात बड़े प्रेम से, किस लिए हमको जो प्रधाना उसे मिला देगी, इसलिए बिना इनके कृष्ण उनसे मिल नहीं सकते, इसलिए कवि
अच्छा चंद्र के पक्ष में क्या हुआ? श्यामा। रात का जो विलास होता है, चंद्र अंधकार जब भी हो जाए अमावस्या, तो उस समय चंद्र को तो उस समय में ये सब तारकाएं दिख हुआ। उस समय में रात्रि का विलास है, ताराओं का नक्षत्र मंडल, एक सुंदर सी नीली साड़ी और उसमें स्वर्ण से बिंदी सब बनाए गए और एक एक चमक रहे। उस समय छोटा सा एक मुझे चमकता है क्या, वो भी रात में कैसा लगता है, जग जग झगड़ा करता है। चंद्र को और शोभा को बढ़ाने वाली ये सब है, चंद्र उनको श्यामा माने रात्रि का, श्यामा रात्रि का, और ललितो माने ललित माने शोभा, इनके शोभा को विस्तार करने वाला ये चंद्र है। और कृष्ण के पक्ष में क्या होगा वो बतलाया, ललिता और श्यामा राधा प्रयाण, और राधा के जो प्रिय हैं प्रयाण, राधा के अत्यंत प्रिय। अच्छा वहां पर राधा का अर्थ क्या होगा चंद्र पक्ष में?
अनुराधा,
राधा नाम विशाखा का अनुराधा है ना, राधा के समस्त गुण विशाखा में, इसलिए उनको अनुराधा भी कहते और राधा नक्षत्र भी कहते। तो ये राधा नाम विशाखा का, इसलिए वैशाख महीने में जब निकट आते हैं तो उनके निकट अर्थात राधा के निकट में रखते हैं, इसलिए चंद्र के पक्ष में जो होता है। तात्पर्य क्या, किस तरह से समस्त गोपियों को आकर्षण करने वाले हैं, उसी प्रकार से समस्त जीव जितने भी जंगम आवर पुरुष ज्योति सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं ये। किंतु जब हम योग्य होंगे ऐसे तब, जैसे एक रोगी है उसको हो गया है कमला रोग,
जंडी
या रोग जॉन्डिस, जॉन्डिस वालों लोगों को मिश्री या कोई भी मीठी चीज मीठी नहीं लगती,
कैसी
कड़ी लगती, और उसको पीला ही सब कुछ, सफेद भी लाल भी नीला भी सब उसको, यहाँ तक उसका शरीर जिससे लग जाएगा ना तो वो पीला हो जाएगा,
सब करेगा पीला,
उसका सब कुछ जितना है वो सब पीला हो जाता है, ये पीला या रोग। अभी हम लोग पीलिया रोग के मारे सब लोग विश्व के सब लोग, इनमें से कुछ लोगों का पीलिया रोग अच्छा हो रहा है मिश्री का स्वादन करने, और जो लोग कृष्ण नाम कृष्ण लीला चरित्र कथा इत्यादि का सेवन नहीं करते उनका पीलिया रोग और बढ़ जाए, यहाँ तक कि एक दिन वो
राम नाम
वो आकार। इसलिए यहाँ कह रहे हैं इससे लेकर
राधा प्रयाण विधि
उनको अच्छा नहीं लगेगा, जिनको विद्या का नशा चढ़ा हुआ है, रोग है पीलिया रोग, उनको मिश्री मिट्टी नहीं लगती। ऐसे ही ये भगवान का नाम अत्यंत सुंदर होने पर भी, मीठा होने पर भी, कंस को और जरासंध को, शिशुपाल दंत वक्र और प्रभास के पिता हिरण्यकश्यप इत्यादि को मिट्टी नहीं बड़ी कड़वी लगती है, और भक्तों को बड़ी मिट्टी लगती है नारद इत्यादि,
नारद
साजा जाए बिना राधिकार, इनके लिए बड़ा नहीं। हम लोगों को अभी जो थोड़े से अभ्यन करने लगे हैं गुरु जी के से लेकर के, उनको तो बड़ी मिट्टी लगी, और संसार की कोई भी चीज कड़वी लगी, और जिनको ऐसा नहीं है संसार की चीज उनको मिट्टी लगेगी और ये चीज कड़वी लगेगी, किंतु अंत में उनको पछताना पड़ेगा। इसलिए भगवान नाम भगवत कथा इत्यादि का श्रवण करना ही जीवन का प्रधान और एकमात्र लक्ष्य है, नहीं तो इससे वंचित हो जाने पर वंचित हो जाएंगे। इन कथाओं का रसास्वादन भी वंचा।